નિયમ સાર કારણ કાર્ય નિયમ લેક્ચર નંબર 361 ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો વર્ષાયાણં નમો લોયે સૌવસાહુણં નમ્યૂણજિનં વીરં અણંતવરણાનદં સણસહાવં મોક્ષાનિયમસારં કેવલી સુદ કેવલી વંદન.
આચાર્ય શ્રી કુનકુન ભગવાન દ્વારા રચિત યહ નિયમસાર નામક ગ્રંથ હૈ ઉસ પર પદ્મ પ્રભમલધારી દેવને તાત્પર્યરૂપથી ટીકા લિખી હુઈ હૈ. ઇન પર ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામી કે જો પ્રવચન હુએ હૈ વો કારણ કાર્ય નિયમ પુસ્તક રૂપ સે પ્રસિદ્ધ હુએ હૈ. ઉસમેં સે અભી હમારા છઠ્ઠા ભાગ ચલ રહા હૈ, છઠ્ઠી પુસ્તક, પૃષ્ઠ સંખ્યા 10, નયે પેરેગ્રાફ યહાં સે હમ શુરૂ કરતે હૈ. એ 141 गाथा हम पढ़ रहे हैं. देखो, आ गाथा मां निरंतर स्ववशने अंतर पड़ा बिना. निरंतर का अर्थ क्या है? बीच में कोई अंतर नहीं, गैप नहीं, उसको कहेंगे निरंतर. तो निरंतर ने अंतर पड़ा बिना ज्ञानानंद स्वभाव नित्य ने ध्रुव छे तेने आश्रय निश्चय आवश्यक कार्य होय छे. કર્મ એટલે કાર્ય, આવશ્યક કર્મ કા અર્થ ક્યા? આવશ્યક કાર્ય, આવશ્યક કાર્ય. આ ગાથામાં નિરંતર સ્વવશને અંતર પડ્યા વિના જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ નિત્ય અને ધ્રુવ છે. તેને આશ્રય નિશ્ચય આવશ્યક કાર્ય હોય છે. કર્મ એટલે કાર્ય. નહીં, અંદર રખા હતા ને, 5 નંબર રખે. પાંચ ઓર છ એક જૈસે દિખતે હૈ, દેખો જરા. મેને હાથ સે નામ ડાલે આપકા. હા, પેજ નંબર 10. દેખો, નયા પેરેગ્રાફ સે શરૂ હમ કરતે હૈ. આ ગાથામાં નિરંતર સ્વવશને, નિરંતર કા અર્થ ક્યા ક્યા? અંતર પડે બિના, ગેપ બીચ મેં નહીં હૈ, નિરંતર એને સતત, કન્ટિન્યુઅસ. અંતર પડ્યા વિના જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ નિત્ય અને ધ્રુવ છે. તેને આશરે નિશ્ચય આવશ્યક કાર્ય હોય છે. કર્મ એને કાર્ય, યા લિખા ને, કર્મ એટલે કાર્ય. નિશ્ચય આવશ્યક રૂપી કર્મ એટલે કાર્ય, એટલે મોક્ષનો માર્ગ. પેજ નંબર 10, નયા પેરેગ્રાફ, ચૌથી તીસરી લાઈન. આવું આકરું પડે, વ્યવહાર સાધન છે, વ્યવહાર સાધન છે, શાસ્ત્રમાં આવે હો એવું એ સબ કહેકર વિરોધ કરતે. મુમુક્ષુ પૂછતે, બે ને સાધન કીધા છે? ઉત્તર, એ તો સાધ્ય થયું છે, પછી આ સાધનને આરોપ દેવાય છે. ક્યાં કહા? જહાં નિશ્ચય પ્રકટ હુઆ હૈ તબ ઉસકો સાધન કહેને, બિના ઉસકે નહીં. આરોપ દેવાય છે કે ને, વો તો ઉપચાર સે કહે દેતે હૈ, કહે દેના હૈ નહીં, કહે દેના. થયા વિનાનું સાધન
एकलू साधन फादन चेज नहीं, यानी पहले साधन करेंगे बाद में साध्य होगा वो बात नहीं है। पहले व्यवहार होता ही नहीं तो पहले साधन कैसा होगा, ये कहना चाहते हैं। आत्मा नो अनुभव थयो स्थिरता थई, पूर्ण स्थिरता न थी त्या रागनी मंदता आवे एने व्यवहार साधन नो आरोप अपाय छे, उसको कह देते हैं। परंतु वो साधक ऑलरेडी हुआ है, निश्चय प्रकट हुआ है, पूर्ण वितराग नहीं है तो राग है, तो वितरागता के साथ जितना राग है उसको व्यवहार कह देते हैं। वो मार्ग नहीं है पर मार्ग के साथ सहचर है तो उसको भी मार्ग कहने की प्रथा है, ये कहना चाहते हैं। उनके प्रॉब्लम चलते फोन के कुछ, हाँ देखो हम यहाँ देख रहे हैं अभी। निश्चय साधन छे, चौथी लाइन उत्तर की, निश्चय साधन छे ने व्यवहार साधन नो आरोप अपाय छे। निश्चय साधन अंतर नो आश्रय जान नथी, देखो निश्चय साधन भी अंदर ही है, साध्य तो अंदर है ही है, साध्य ने वो प्रकट होना, उसका साधन क्या, वो भी अंतरंग में ही स्थिरता है। वही कहते निश्चय साधन छे एने व्यवहार साधन नो आरोप अपाय छे। निश्चय साधन अंतर नो आश्रय जानती, निश्चय साधन क्या है, अंतर नो आश्रय, वो जहाँ नहीं है एने व्यवहार साधन आरोपती पण कहवातो नथी, उसके राग को व्यवहार साधन भी कहने में नहीं आता। जिसको अंतरंग में स्थिरता नहीं है उसके लिए वो व्यवहार है ही नहीं है, तो उसका जो कुछ क्रियाकांड चल रहा है उसको साधन भी नहीं कहेंगे, ये कह रहे। आवो मार्ग एम कहू छे। आ गाथा मां निरंतर स्ववशने भगवान ने भक्ति नो विकल्प उठे ए परवश छे, परलक्ष्य है वहां परवश है वो। सामायिक ना पाठ बोली ने बेसू, वो 10 नंबर का पेज है, अभी नीचे से दूसरा पैराग्राफ चलेगा। क्या कहते हैं सेकंड लाइन, सामायिक ना पाठ बोली ने बेसू के मारे सामायिक थई ए बधु परवश छे। वो तो पद्धति है ना, उसमें तो सामायिक लेकर बैठ जाते हैं घंटे भर, वो बैठना हिलना नहीं वहां से, बैठकर पढ़ना जो कुछ है। ए पराधीन राग छे संसार छे, वो शुभ भाव रूप है तो संसार है। आ गाथा मां निरंतर स्ववशने निश्चय आवश्यक कर्म छे एम कहू छे, एम भगवाने कहू छे, एम कुंदकुंदाचार्य पोतानी भावना माटे पण आ बनाव्यू छे। हा हा, नियमसार पोतानी भावना माटे बनाव्यू छे। भगवान आम कहे छे के स्ववशने आश्रय आवश्यक कर्म छे एम कहू छे। स्ववशने आश्रय ने स्ववश कौन है, तो नित्य ध्रुव चीज कायमी स्वभाव, और उसके आश्रय से आवश्यक कर्म होता है। पराश्रय जेटलू लक्ष्य जाए तेटलू बंधनु कारण छे, चाहे तो भगवान नी भक्ति नु स्मरण रहे अंदर पंच परमेष्ठी नु स्मरण थाय, पण छे बंधनु कारण। परद्रव्य आश्रय भाव थाय ए बंधनु कारण छे, अने स्वद्रव्य आश्रय भाव थाय ए मुक्ति नु कारण छे। सिंपल सादी भाषा में परद्रव्य में भले वो भगवान अरिहंत सिद्ध के भी आश्रय ने उनके लक्ष्य से जो भक्ति भाव होता है राग है बंध का कारण है, और स्वद्रव्य के आश्रय से जो भाव होता है वो मुक्ति का कारण। तद्दन बे विरुद्ध छे, विधि अनुसार परम जिन मार्ग ना आचरण मा कुशल एवो जे जीव विधि अनुसार आत्मानी अनुकूलता मा अंदर जाऊं ए विधि ने अनुसार छे, वही उसका मार्ग है, वही उसकी विधि है प्रकट करने की। विधि अनुसार परम जिन मार्ग ना आचरण मा कुशल, परम जिन मार्ग एटले वितराग मार्ग ना आचरण मा कुशल, आचरण यानी अंतरंग स्थिरता, यही आचरण है, वो शरीर की क्रिया को आचरण नहीं कहते। एवो जे जीव सदाय अंतर्मुख पनाने लीधे अन्य वश नथी, पहले में पहले स्ववश है कह दिया, अन्य परवश है ही नहीं है, दोनों ओर से नक्की कर दिया। विधि ने अनुसार आत्मा ने अनुसार एम कहे छे विधि एटले ए आत्मा चैतन्य आनंद स्वरूप अनाकुल निराकुल निर्विकल्प स्वरूप एनी विधि ने अनुसारे परमजी मार्ग में आचरण में कुशल मार्ग ना चाहिए ना विधि अनुसार परमजी मार्ग ना आचरण में कुशल आऊ तो कितला के सांभ्यू न होए मूल में ना लिखा था यहाँ माँ लिखा है एक मिनट बात वही की वही लो बाहर माँ माता कूट करया करे ए वो जे जीव यानी जो उसमें आचरण में कुशल ऐसा जीव लिया के वो आत्मा नी जे अंतर माँ उतरवानी विधि छे विधि यानी उसका प्रोसेस जो मार्ग श्रद्धा ज्ञान चारित्र जहाँ अंतर माँ उतरवानी ए विधि ने अनुसार मुमुक्षु पहला व्यवहार लीधो पची निश्चय लीधो उत्तर ना ना व्यवहार क्या ए तो विधि अनुसार अंतर लीधु व्यवहार विधि नी वात ज नथी मुमुक्षु कहते हैं भाई कहे छे के विधि नो अर्थ व्यवहार छे उत्तर ना ना अर्थ कर्यो ने पहलो विधि ना बे अर्थ थाय एक विधि कर्म अने एक विधि आत्मा ने अनुसार कर्म को भी विधि कहने हम कहें विधि लिखित कहते आपने सुना होगा नहीं समझा कभी हम कहते नसीब के लिए कहते हैं विधि लिखित हमारा ऐसा है विधि लिखित का है तो विधि कर्म को विधि कहते हैं यहाँ विधि के अनुसार इन्हें कर्म के अनुसार नहीं लेना है विधि अनुसार इन्हें आत्मा की जो विधि है वो प्राप्ति की जो रीत है विधि है उसको भी विधि कहते हैं यहाँ क्या कहा विधि के दो अर्थ एक विधि कर्म कर्म को भी विधि कहते हैं विधि लिखित शब्द आपने सुना होगा बहुत बार उसको विधि कहते कर्म को विधि कहते और एक विधि आत्मा ने अनुसार हाँ यानी जो विधि विधि अनुसार यानी जो उसका आत्मा में उतरने की जो रीत है विधि है पद्धति है मार्ग है प्रोसेस है उसको विधि कहते हम कहते इसकी विधि क्या है बनाने की विधि क्या है सब कहते ना रेसिपी हाँ लड्डू बनाने की विधि बताओ हमको हाँ तो बताएंगे विधि अनुसार परम जिन मार्ग ना आचरण मा कुशल वो जिन मार्ग ना है ना ए विधि चैतन्य मूर्ति भगवान एना सन्मुख मा दृष्टि ज्ञान ने चारित्र थाय ए एनी विधि समझ में आई ना बात यानी जो त्रिकाली जो स्वभाव भाव उसके सन्मुख दृष्टि उसके सन्मुख ज्ञान उसकी में ऋणता ये उसकी विधि नहीं तर शब्द मा कर्म मा विधि आवे छे विधि ने वश पड़ो विधि नो नाश करो एवो शब्द आवे छे विधि एटले कर्म एने कर्म के लिए भी विधि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते अहीं ए नथी एने यहां वो विधि के अनुसार एने कर्म के उदय में क्या करे हमें उसके अनुसार हो गई वो उसका अर्थ नहीं है हाँ अहीं तो पहलू कहू ने स्ववश ने निश्चय आवश्यक कर्म छे स्ववश ने वो त्रिकाली जो ध्रुव नित्य स्वभाव है उसके स्ववश ने यानी उसके निश्चय आवश्यक कर्म होता है एम कहूं छे पहली लीटी में कहूं छे हा हा विधि अनुसार ए विधि जा छे क्या है सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र यही उसकी विधि है चैतन्य भगवान पूर्णानंद नो नाथ एने अनुसरवू एज विधि छे रेसिपी चाहिए ना ये रेसिपी एने अनुसरीने थवू एनु नाम विधि छे राग ने अनुसारे थवू एनु नाम क विधि छे अविधि छे क विधि ने कुछ जिसको कहें मुमुक्षु आप अर्थ ज बधा जुदा करो छो उत्तर में कहते ये छे अंदर अपनी ओर से कुछ नहीं किया है जो अंदर है उसी को खोल कर बताया है आ शू कीधु पहले थी कहूं शू के आमा निश्चय आवश्यक निरंतर स्ववशने निश्चय आवश्यक छे एम केवुं छे। निरंतर एने नित्य ध्रुव जो है त्रिकाली स्वभाव भाव उसके निश्चय आवश्यक कर्म होता है, यानी उसके आश्रय से निश्चय आवश्यक प्रकट होता है। ए भगवान आत्मानी विधि, कर्मनी विधि नहीं, ये तो संसार आमा एक एवं नहीं, यहाँ कर्म की कोई बात नहीं बतानी है। भगवान चैतन्य स्वरूप एना दर्शन ज्ञान चारित्रना चैतन्य परिणाम ए विधि अनुसार परमजीन मार्गना मार्ग छे ने, अहीं मार्गनी वात करवी छे ने, परमजीन मार्गना आचरण मा कुशल, वितराग मा रहेवाने कुशल, अंदर वितरागी दशा मा गमे ते प्रकारे पण रहेवा मा डायो एटले कुशल, निष्णात जिसको हम कहेंगे एक्सपर्ट। वितराग भाव अंदर, कहीं कोई चीज नहीं अंदर, आशा के स्पृहा के आश्रय छेज नहीं, वो है ना बस मोक्ष की स्पृहा, बाकी सब की निस्पृह है उससे। विधि अनुसार परमजीन मार्ग ना आचरण मा कुशल एवो जे जीव सदाय अंतर्मुखपणा ने लीधे, लो विधि अनुसार आ सदाय अंतर्मुखपणू जहाँ भगवान पूर्ण स्वरूप छे अंतर्मुख, त्यां सदाय अंतर्मुख दृष्टि राखीने अंतर्मुखपणा ने लीधे अन्य वश नथी, ए परने वश नथी। पर के लक्ष्य करने वाला पर के वश हो जाता है, ये तो अन्य के वश है ही नहीं है। स्ववश तो पहले बताया, अब अन्य के अंतर्मुख होने के कारण वो परवश बिल्कुल नहीं है, ये बात यहां बता रहे। आवश्यक नो अधिकार छे ने, परने वशे छे आवश्यक नथी, स्वने वशे छे ते आवश्यक छे। अवश्य कर्म होए तो आ छे, कर्म ने कार्य, आवश्यक एटले अवश्य कार्य, जरूरी अने अवश्य कार्य होए तो ते भगवान चैतन्य ने अनुसरीने अंतरमा दर्शन ज्ञान चारित्रमा आवु ए विधि ने अनुसार छे। ये जरूरी कार्य है, आवश्यक कार्य है कि चैतन्य को अनुसरी के अंतर में दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना। आकरू लागे, वक्त मळे नहीं, हजी तो निर्णय करवानो वक्त न मळे, क्योंकि क्या है कभी कभी तो ऊपर ऊपर की बातें सुनते हैं, पता नहीं है द्रव्य गुण पर्याय क्या है, उसकी जिसको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं, उसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, और फिर कुछ सुनकर भी उसमें कुछ हाथ में नहीं होती बात। ध्यान ऊपर बात आव भी मुश्किल पड़े, ध्यान ऊपर इन्हें ख्याल में आना, ध्यान ऊपर इन्हें वो अंतरंग का ध्यान, उसकी बात नहीं, धर्म ध्यान की बात नहीं हो रही है, ध्यान ऊपर बात आव इन्हें ख्याल में आना। मानस नहीं कहता कि भाई हूँ कहूँ छू ये ध्यान में तो ले, पची तारे करव हो एम करजे, उस अर्थ में लेना इसको। हाँ तारे करवानू करजे पन ध्यान में तो ले, कहे छे कि नहीं एम, एम अही कहे छे कि तू ध्यान में तो ले पछी आमा रुचि करीने अंदर में जा, एवं पण आवे छे क्यांक, ध्यान में ले पछी तने ठीक पड़े एम करजे। हम कहते ना सुन तो सही, अरे क्या कहना चाहते वो पहले सुन तो सही, बाद में तू तेरा नक्की कर, सुनने को ही पहले तैयार नहीं, यानी जो अपने ही कल्याण की बातें पहले से ही रोक लगा देते कि मुझे ये नहीं सुनना, हाँ उसको कहते अरे सुन तो सही, बाद में तुझे जो करना है वो कर। दश वैकालिक ने कहा था वहां ध्यान में ले पछी एम करूं ये तारी मर्जी। नया पेरिग्राफ, एवो जे जीव सदाय अंतर्मुख पणाने लीधे, सदाय अंतर्मुख शुद्ध उपयोग, आत्मा तरफ नो जे उपयोग ए शुद्ध उपयोग, पर पदार्थ भगवान आदि परमेश्वर तरफ नो उपयोग ए अशुद्ध उपयोग, भले वो शुभ होए, शुभ हो के अशुभ हो दोनों को अशुद्ध में डालेंगे, ए सदाय अंतर्मुख पणाने लीधे अन्य वश नथी, यानी परवश नहीं है स्ववश है, पहले तो स्ववश है बता दिए, अब दूसरी ओर से भी पक्का कर रहे अन्य वश नहीं है, परवश नहीं, परंतु साक्षात स्ववश छे। अंतरमा चैतन्य भगवान अनंत गुणनी खान एनो आश्रय ते स्ववश छे। कर्म का उदय उसमें कुछ आड़े आने वाला नहीं है। यदि कर्म हट जाए तो अपने अंतर्मुख हो जाता है, ऐसा करेंगे तो अंतर्मुख हो जाएगा, ये करेगा तो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं उसकी। यहाँ लिखा ना देखो 12 नंबर पेज, साक्षात सौ वर्ष छे बड़ा हमने, अंतर्मा चैतन्य भगवान अनंत गुणी खान एनो आश्रय ते स्ववश छे। चाहे तो पछी भगवान नी भक्ति आदि विनय ए बधु परवश छे। मुमुक्षु, गुरु भक्ति हो तो, अरे भगवान की भक्ति परवश तो गुरु उत्तरे तो परवश छे, तो ए परवश छे। अहीं न कह्यूं पहला के पहला परपदार्थ नु मारे शू काम, यानी तो बस मुझे तो स्वभाव भाव तो त्रिकाल है और मुझे उसी में लीन होना है, तो उसमें किसी अन्य चीज की कोई अपेक्षा ही नहीं है। भगवान की भक्ति करेगा फिर अंदर में ऐसी कोई कंडीशन बाहर डाली ही नहीं है। अत्यारे तो ये बधा ए रीते फूके फूके ने बोलते जाते सभा भरा है, हूँ आम करो हूँ आम करो, ये तो अजैन मार्ग छे। अजैन ने जैन पने मनावे बहु झीनी वातु बापू। हाँ हाँ, अंतरना आचरण मा कुशल एवो जे जीव, अंतर आचरण मा कुशल एवो जे जीव, हाँ हाँ, ए सदाए अंतर्मुखपणा ने लीधे अन्य वश नथी, एने विकल्प नथी, ए परवश नथी, परंतु साक्षात स्ववश छे एवो अर्थ छे। छे क्योंकि विकल्प है वो राग है, वो राग है वो व्यवहार में चला जाए। एक कथन नो अर्थ साक्षात स्ववश छे एम, अन्य वश नथी एनो साक्षात स्ववश छे एवो अर्थ छे। उसमें से ही अर्थ निकाला, अन्य वश नथी एनो अर्थ स्ववश छे। देव गुरु ने धर्म ने वशे पण नथी ते स्ववश छे। हा हा, देव गुरु ना सानिध्य में आव्यु हतु ने, पहले बताया था हमारे गुरु के सानिध्य, गुरु ने बताया फिर उनके सानिध्य में ने हमने वो जाना वगैरह वगैरह, निमित्त को बताना था वहां पर। यहाँ क्या कहते हैं, उन्हीं ने कहा था ना पहले सानिध्य में ऐसा शब्द आया था, ये तो सांभवा माटे, क्योंकि गुणों ने हमको ये बताया और फिर हमने वो मार्ग अपनाया, इसी बात पहले आई थी। पण थवा काले ते लक्ष्य छोड़ी देवानु, क्या कहा, जब वो तो देखो विधि ने रीत बताने के लिए कहो या आत्मा के अनुभव के लिए कहो, मोक्ष मार्ग के उपदेश के लिए गुरु ने तो समझाया, तो निमित्त रूप से तो देशना के लिए देशना देने वाले वहां निमित्त रूप से रहेंगे, परंतु जीव स्वयं अपने में स्थिर होगा उसकी बात है। थवा काणे ते लक्ष्य छोड़ी देवाना, अब ना गुरु का लक्ष्य रहेगा ना देव का रहेगा ना वो जल पर रहेंगे जो जिस वाणी में समझाया, बस आत्मा में स्थिरता है उसमें। इसलिए कहते थवा काणे ते लक्ष्य छोड़ी देवाना, अंतर्मा स्वनो आश्रय लीधा विना, यानी डायरेक्ट आत्मा में ही ज्ञान को लगाया है। आत्मा संबंधी विकल्प की बात नहीं, मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ, ये तो भाषा में हो गया है, अपने को ही समझा रहे जैसे, उसको विकल्प में चला जाएगा, वो विकल्प की बात नहीं यहाँ पर। किसकी बात है देखो, अंतर्मा स्वनो आश्रय लीधा नहीं, हाँ लीधा बिना समय दर्शन ज्ञान चारित्र त्रण काल मा थाय नहीं, यानी उसका आश्रय लेना उसी को जानते रहना, पर ने आश्रय काई त्रण काल मा थाय नहीं, यानी स्व के आश्रय बिना नहीं होगा, पर के आश्रय से नहीं होगा। व्यावहारिक क्रिया प्रपंच थी परांगमुख, जो जिसको व्यवहार कहने में आता है उसके जो सब क्रियाकलाप है जितनी कुछ जो है, मतलब पंच महाव्रत हो समितियां हो जो कुछ क्रिया है, तो कहते उससे परांगमुख, उसका आदर नहीं है प्रपंच ने, उसका जो हम कहते तो सब विस्तार है ना, क्या प्रपंच मान रहे हम मराठी में कहते ना, कितना प्रपंच मान रहा है ऐसा कहते, यानी सब झमेला ऐसा वैसे
प्रपंच का अर्थ मराठी में ऐसा करते हैं कि जो अपनी चीज, जो अपनी चीज नहीं है उसके प्रति माथा पच्ची करना, वो क्रिया प्रपंच, यानी नॉट कंसर्न एट ऑल, ऐसी बातों में भी ना घुसेड़ने का, उसको प्रपंच कहेंगे, क्रिया में प्रपंच।
जो आयु व्यावहारिक क्रिया प्रपंच, यानी दया दान सामायिक चौबीस अंतो वंदना, इन्हें बधा व्यवहार छ आवश्यक व्यवहार, व्यवहार आवश्यक क्रिया प्रपंच, ये तो क्रियानो प्रपंच छे, पूरा व्याप है ऐसा कहीं। हम कहते ना इतने कितना बड़ा व्याप करके बैठा है, कितना प्रपंच बढ़ा के बैठा है, ये प्रपंच छे के नहीं शांति भाई, कोई दी वैचू नहीं होया। व्यावहारिक क्रिया प्रपंच थी परांगमुख जीव ने शू आ टीका, कुंदकुंदाचार्य कहे छे मारे माटे में बनायू, एनो अर्थ टीका करनार निकया पद्म प्रभुमलधारी देव, आहा हा, ए कहे के मैं तो मारे माटे आ बनायू छे। व्यावहारिक क्रिया प्रपंच जेटली दयादान व्रत काम क्रोध भगवान नो स्तवन स्तुति, ये काम क्रोध भी लिया, शुभ भी लिया, अशुभ लिया, ये सब ए बधी क्रियानो प्रपंच छे। भगवान नो स्मरण करवू ए क्रियानो प्रपंच छे, कारण के आत्मानो स्वभाव ज्ञान ने आनंद एनाथी विरुद्ध भाव छे। ये कौन सा विरुद्ध भाव है सपना? भगवान की, भगवान का स्मरण करना ये कौन सा भाव है? शुभ भाव, बहुत अच्छा, शुभ भाव है, वो राग है, शुभ शुभ, हमने वही पूछा था, शुभ शुभ है तो वो तो क्या है, राग है, बंध का कारण है, इसको प्रपंच का, और ज्ञान और आनंद से विरुद्ध भाव है, माटे ते क्रिया प्रपंच छे। व्यावहारिक क्रिया प्रपंच थी परांगमुख जीव ने, उससे परांगमुख है अपने स्वसन्मुख, अपने सन्मुख हुआ तो बाहर से हट गया है, परांगमुख होना समझते हैं, उसे पीठ फेर लेना, उसको कहेंगे परांगमुख। सन्मुख होना यानी क्या? स्वसन्मुख, अपने स्व के प्रति मुख है, मुख है उसकी दिशा स्व की तरफ, उसको कहने सन्मुख, और परांगमुख है उससे हट जाना। व्यावहारिक क्रिया प्रपंच थी परांगमुख जीव ने, यानी वो स्व सन्मुख अपने में स्थिर हुआ तो पर का लक्ष्य छोड़ दिया उसने, उसको स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान प्रधान स्व आश्रित जो यू निज आत्मा जेनो आश्रय छे, स्व आश्रय निज आत्मा का आश्रय लिया, आश्रय लिया ने उसी को जानते रहा, ज्ञान उसी में लगाया, ज्ञान दर्शन आचरण सब उसमें ले लेना, उसका आश्रय लिया, निज आत्मा जेनो आश्रय छे एवं निश्चय धर्म ध्यान परम आवश्यक कर्म मां प्रधान छे। यहाँ आवश्यक कर्म ने निश्चय आवश्यक बता रहे तो उसमें उसको प्रधान बताया, प्रधान ने मुख्य, अवश्य कार्य मां ए मुख्य छे, कौन सा? कि आत्मा के आश्रय से जो निश्चय धर्म ध्यान प्रकट हुआ है उसी को मुख्य आवश्यक कहा। परांगमुख जीव ने स्वात्माश्रित किससे परांगमुख हुआ? व्यवहारिक क्रिया प्रपंच से, तो स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान प्रधान परम आवश्यक कर्म छे, ए परम आवश्यक अवश्य कार्य करवा लायक आ छे। आवश्यक किसको कहेंगे? अवश्य करने लायक जो कार्य है उसको आवश्यक कर्म कहते। निश्चय नी तो वात सांभळे त्यारे एम लागे आ तो कोई एकांत नी वात छे, एम लोगों ने थाय छे, अने लोगों को ऐसा लगता है। निश्चय ते सत्य छे, परम सत्य छे, व्यवहार ते आरोपित कथन छे, ए वास्तविक सत्य नथी। आहा, क्या कहते हैं? शरीर ही मैं हूँ ऐसी आत्मबुद्धि है, और रागादि में ये मेरे है ऐसी जो वहाँ उसकी बुद्धि पड़ी, बुद्धि ने मान्यता है, इसलिए वो व्यवहार का जहाँ जहाँ उपदेश आता है वही सच्चा लगता है, वही यथार्थ लगता है, उसके बिना निश्चय कैसे होगा ये मान्यता पड़ी है। आत्मा का तो अनुभव है ही नहीं है, और उसका उपदेश भी टाल देता है,
क्योंकि उसको ये निश्चय की बात है करके छोड़ देता है, एकांत है करके छोड़ देता है, और बस कुछ क्रिया करने में धर्म हुआ या मैं धर्म कर रहा हूँ ये मानकर बैठा है।
कल आपने पूछा था कि जब कोई कार्य होता है तो निमित्त वहाँ होता है और निमित्त से ही कार्य होता है, ऐसा आपका मानना था, लेकिन निमित्त होता है जरूर लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता है, निमित्त कार्य में कुछ भी मदद नहीं करता है, ये बात हमने कल आपसे बताई थी। आज हमारे पास मिलने के लिए पति पत्नी दोनों आए थे, पार्ला में रहते हैं, वो कुछ काम के लिए आए थे, तो वो पत्नी टीचर है, तो उसको ये बताया कि तेरे सिखाने से लोग सीखते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसा, तो मैं तो निमित्त तो हूँ ना, निमित्त तो हूँ ना, अरे काय का निमित्त, निमित्त किसको कहते हैं मालूम नहीं तुझे,
क्या
मैंने है? मैंने इनको पढ़ा है, इनको सुना है, इनको इनका मैं लेक्चर सुनती हूँ, वो करता हूँ वो करता हूँ, बोला नीचे का कुछ मालूम नहीं है तुमको, ऊपर ऊपर तुम उंगली मारते खाली। आए थे 15 मिनट के लिए, 3 बजे एग्जैक्ट, 4:45 बजे तक रुके, मुझे याद नहीं है, आपने बोला था ना निमित्त की बात, आपके नहीं, जगत में 99% लोगों को निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता इस बात को एग्री करने को मुश्किल होता है, और वो जो आगम का अभ्यास करेगा
बिल्कुल तो बेस से अगर बेसिक फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होते हैं, खाली सुनकर ये बात तनक्के नहीं होगी। और ये देखो निमित्त तो होता है, होता है ना, क्या कोई परद्रव्य अपना कार्य कर रहा है। देखो अभी क्या हो रहा है, आपको लगेगा आप तो बोल रहे हैं या इन्होंने बोला इसलिए हमने सुना, इसको हमने समझा कि नहीं, तो आपकी ज्ञान की पर्याय आपके स्वचतुष्टय में हुई क्या, आपके बाहर हुई, स्वयं में हुई, तो जो पर्याय हुई वो ज्ञान गुण आपके अंदर ही था ना, वो गुण का परिणमन आपसे ही हुआ है, तो कोई ने आके उसको परिणमन कराया, उस समय क्या है किसी का वहां समझाने का कार्य चल रहा है, ये वाणी तो पुद्गल का कार्य है, तो वाणी आ रही है, परंतु वो बोलने का भाव या समझाने का भाव ये जो राग भाव है, गुरु ने क्या किया उसको समझाने का विकल्प आया। कभी ऐसा भी होगा ना किसी को समझाने का विकल्प आ रहा है और वाणी नहीं छूट रही, ऐसा भी होगा कि नहीं होगा, होता है कि नहीं ऐसा, अरे हमको तो बच्चों को समझाने का पन पता नहीं है कैसा बोले क्या हो, ऐसा भी हो सकता है, या कोई दूसरी भाषा वाला कोई हो और उसको हमको समझाना है, हमको नहीं समझाने हो भाषा नहीं निकलेगी वैसे, कोई कहते हैं हमको अंग्रेजी में समझाओ और हमको जैसे हिंदी में हम फ्लुएंटली बोलते हैं ऐसा अंग्रेजी में नहीं होगा, या कोई कहेंगे कन्नड़ में समझा रहे, हमको कन्नड़ समझती नहीं है, हमको आता ही नहीं कुछ, उसमें हम क्या समझाएंगे, ख्याल में आती है ना बात, तो ये सारे इतने कार्य एट ए टाइम होते हैं, तो हमको क्या लगता है देखो हमने समझाया इसलिए आप समझ गए, ऐसा है नहीं है, होता है निमित्त है, क्योंकि कार्य में हर कार्य स्वद्रव्य में अपने स्वयं के उपादान से होता है, क्योंकि जो स्वयं उस रूप परिणमता है वो उसका सच्चा करता है जिसको हम उपादान करता कहते, उस समय अन्य द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहा है, तो हमें वो अनुकूल लगने का आरोप आता है, इसको कहते आरोप आना, हमें लगा कि इसने ये कार्य किया, क्योंकि अंतरंग ये शक्ति है वो दिखती नहीं है, उपादान की शक्ति नहीं दिखती है, दिखता क्या है बाहर से जो कोई अन्य कार्य हुआ वो दिखता है, जैसे बीज में शक्ति है कि पूरा वृक्ष होने की, वो शक्ति कहाँ दिखती है, अरे बीज का डिसेक्शन करके ऐसा ऐसा करके फिर भी वो शक्ति नहीं दिखी, परंतु वो बीज किसी ने बोया जमीन में बराबर रखा उसको रेगुलरली पानी डाला अच्छी धूप वगैरह आई तो कुछ दिन में वो वृक्ष उगा, तो किसने उगाया हम किसका आरोप होगा, इन्होंने वो वृक्षारोपण किया उसको पानी डाला ये बराबर किया उसकी हिफाजत रखी आज ये वृक्ष इतना खड़ा है, निमित्त दिखता है और वो शक्ति अंदर की दिखती नहीं है, बाहर से पता नहीं चलता है, खाली देखने से वो शक्ति का क्या पता चला, परंतु वो बीज स्वयं वृक्ष रूप हुआ है, ना पानी वृक्ष रूप हुआ है, ना वृद्धु पुरुष रूप हुई, ना मिट्टी वृक्ष रूप हुई है, ऐसा उसका अर्थ हर एक कार्य में ऐसा समझना। और ये बात हमें जिनागम से पता चलती है, आगम के अभ्यास से हम उस पर विचार करेंगे तो ये विचार करने के बाद वो एक्सेप्ट होगा। ऐसे किसने पहली बार सुन लिया और उसको नहीं नहीं आप कहते हो इसलिए सच्चा, ऐसा नहीं, परीक्षा करके बरोबर उसको एक्सेप्ट करना है, बिना विचार करके नहीं।
देखो बात ऐसी है, जो किसान रहता है उसने 1 किलो अनाज लाया है, तो मान लो 1 किलो अनाज में 1000 दाने हैं, है नहीं? तो 1000 दाने डालता है तो सभी को झाड़ आता है क्या? सबको पानी पिलाता है, सबको धूप देता है, सबको होता है मिट्टी है, तो निमित्त से कारण वो बीज में वैसी ताकत होनी चाहिए कि वो झाड़ रूप बने, ऐसा आपका कहना है। देखो मैं बात बताता हूँ आपको, अपने यहाँ वीरेश भाई आते हैं ना, वो कुर्सी पे बैठते हैं आपके इधर, वो आज 16-17 साल हो गए होंगे, 20 भी हो गए, मुझे याद नहीं, 16 साल तो पक्के हो गए। 16 साल पहले वो और उनके एक मित्र दोनों सुनने को आए और वहाँ निमित्त की बात उठी, तो हमने बताया कि निमित्त से कार्य नहीं होता है। वो जो नाराज हुआ उसका मित्र, वो गायब हो गया, तो आज तक आया ही नहीं। और ये धीरज से सुनते रहे। देखो अपने पास यहाँ जो आते हैं आधे से अधिक लोग दिगंबर नहीं है, श्वेतांबर में से, स्थानकवासी में से, डेरावासी में से आते हैं। हमें कोई कहाँ से आता है उसकी बात नहीं, लेकिन जो कॉन्स्टेंटली सुने, यहाँ कुछ बात कहने जैसी है ऐसा समझे तो टिकता है। लेकिन हम एक दिन में सब कुछ समझ में आवे कभी नहीं समझेगा, क्योंकि ये एक के ऊपर डिपेंडिंग दूसरी बात है, वो सारा डिपेंडेंसी जो है वो ख्याल में आते एकदम क्लैरिटी हो जाती है कि अरे ऐसा है, मैं तो आज तक ऐसा समझता था कि निमित्त से ही कार्य होता है। इसके लिए थोड़े से सिद्धांत अपने को ख्याल में आए, जैसे आपने बताया कि प्रत्येक द्रव्य का स्वचतुष्ट भिन्न है, स्वचतुष्ट ने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, तो जब सबका स्वचतुष्ट भिन्न है और एक चतुष्टय में रहने वाले गुण पर चतुष्टय में प्रवेश नहीं करते, तो फिर उसने काम किया ये बात कहाँ से लाई? देखो आपको अचरज लगने वाली बात मैं सिखाऊंगा, जो हमने भी सीखी थी और पहले हम घबरा गए थे। एक बहुत बड़ा पत्थर, शिला जिसको कहते हैं, रास्ते में पड़ी थी, तो हमने उठाने का प्रयत्न किया तो नहीं उठी। इतने में हमारे सारे मित्र आए, तो हम 10 लोगों ने उसको ऐसा उठाया तो वो उठी, तो 10 लोगों ने उठाने का काम किया कि नहीं? अरे वो पत्थर में स्वयं में क्रियावती शक्ति थी, जिस समय वो क्रियावती शक्ति क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना था, उस समय 8 आदमी आए, निमित्त रूप से 10 आदमी आए, उन्होंने उठाने का प्रयत्न किया और वो अपनी स्वयं के ताकत से, स्वयं के स्वभाव से एक जगह से दूसरी जगह गई। ये बात कभी विश्वास रखने लायक है? ये बात हमने सुनी थी और जब अपना दिमाग उड़ गया, अरे क्या बात है, हम ऐसे ही किसी के गंडा दौरा बांध के शिष्य नहीं बने, हमने बहुत मतलब विरोध करके हम आगे आए हैं। यानी ये हमको मालूम ही नहीं था कि पुद्गल द्रव्य में क्रियावती शक्ति होती है और क्षेत्र से क्षेत्रांतर। अब रास्ते में आप चलती है, इतने में बाजू से बस जाती है और वो कचरा उड़ता है, तो हम क्या करते हैं? वो बस ड्राइवर को, अरे पूरे BST कंपनी को गालियां देते हैं, उसके मैनेजर तक पहुंचते हैं। लेकिन वो जो कचरा उड़ा है वो बस के कारण से उड़ा है क्या? वो कचरे के क्रियावती शक्ति से उड़ा है, लेकिन हम उसको समझते नहीं और क्रोधित होते हैं। इसलिए ये तत्व समझकर, सही बात समझ में आने से अपने कषाय की वृद्धि नहीं होती, कषाय मंद पड़ते हैं। जैसे कषाय मंद पड़ते हैं वैसे ज्ञान का उगाड़ अधिक होता है, ज्ञान का उगाड़ अधिक होता है तो तत्व समझने में आसानी होती है, और तत्व समझे तो आत्मा के तरफ अपनी दृष्टि सहज से आती है। इसलिए लोग कहते हैं साधाएं करने से क्या है, साधाएं कुछ करो तो सही, कुछ उपवास करो, कुछ दान करो, कुछ लोगों को मदद करो तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं संसार मिलेगा, क्योंकि कर्म बंध से पुण्य बंध होगा और बंध होकर संसार में रुलेगा। और ये समझ के अपने स्वरूप को तू समझेगा तो तेरे कर्मों का बंधन भी रुक जाएगा। लेकिन इतनी बात समझने के लिए तत्व का अभ्यास होना आवश्यक है। अभी जैसे जैसे विदाई के दिन आए तो हमको और तुमको समझाने का राग आता है।
हाँ, तो ये आरोपित कथन है ना, व्यवहार कथन जो होता है, जैसे निमित्त ने किया ऐसे कहेंगे कथन करने में कोई, क्योंकि कथन तो होता ही है, व्यवहार से कथन आता है, परंतु उसमें से सही अर्थ समझना ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमें अपना कल्याण करना है। हम कहेंगे कि किसान ने समय पर बीज बोए, बरसात समय पर आ गई तो अच्छी फसल आ गई, ये सब ऐसा व्यवहार से कथन होगा, परंतु वहाँ तो हमें ये समझना है वो बीज में से वो फसल जो हुई वो उसकी अंदरूनी शक्ति से हुई है। ऐसे शास्त्र में भी सब कथन आएंगे, ये गुरु ने हमको समझाया, हम तो कुछ नहीं समझते थे, हमको कुछ नहीं मालूम था, इनके कारण हमको ये समझ में आए, ऐसा सहज भाव आता है, क्योंकि जो हमें बात पता नहीं थी इस फील्ड में हमको कुछ नहीं मालूम था, स्वामी जी और उनके शिष्य इनके द्वारा हमने ये सब जाना, तो हमें उनके प्रति बहुत अहोभाव आता है कि इनके कारण हम सीखे। उन्होंने यही समझाया क्या कि निमित्त से कुछ नहीं होता, तो जिस निमित्त से हमें ये पता चला उस निमित्त की ओर हमें आदर भाव विनय भाव होगा जरूर, उसकी विनय करना इसका अर्थ हमने निमित्त के कार्य होता है ऐसा माना, ये अर्थ उसका नहीं होता है।
देखो अभी मुझे याद नहीं था लेकिन इस समय याद हुआ, ये अभी हम भोपाल में गए थे तो ये सातवां शिविर था, अभी सात शिविर होके कम से कम 3-4.5 साल हुए जो भी हुए होंगे, तो वहाँ पर ये पूरा हमारे 6-7 दिन का प्रवचन होने के बाद विदाई देते हैं, उस समय एक वन ऑफ द मतलब जो ऑर्गेनाइजर वो हमको बोला कि मैं तो कभी इसमें इंटरेस्ट ही लेता नहीं था लेकिन ये दोनों जन आए हैं क्या बताते, देखने को तो जाएं, इसलिए पहले दिन गए, तो इन्होंने हमको बताया कि मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, ये समझाने के लिए आया हूँ। बोला रे यार ये क्या है, जब से मैं चुटका हूँ आज तक बोलता है। और हम उनके ही घर में गए 3 बार रहे हैं, मुझे भी याद नहीं था कि मैंने ये बात वहाँ बोली थी करके। और आज ये जो पति पत्नी है थे उनके सामने मैंने ऐसे ही बताया तो वो घबरा गए, ऐसा कभी होता है कि अभी आपने इतना समझाया हम समझे और आप समझा नहीं सकते, तो बोले अभी नेक्स्ट टाइम।
हाँ देखो अभी नीचे से ये दूसरा पैराग्राफ, ये ऊपर से दूसरा कहो, स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान प्रधान परम आवश्यक कर्म छे, एने परम एटले जरूरी कार्य छे, स्व आत्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान प्रधान, ज्यां निश्चय धर्म ध्यान मुख्य छे, प्रधान ने मुख्य वाता ने प्रधानम सर्वधर्मानाम, यानी सर्वधर्मों में प्रधान यानी मुख्य है, एने परम आवश्यक कर्म छे, एम निरंतर परम तपश्चरण मां लीन, एम निरंतर परम तपश्चरण एटले आत्मा, आत्मा मां लीन ए परम तपस्या, उसी को तप कहते हैं, आत्मा में लीनता वही तप है, वही परम तप है, अपवास वपवास करवाए बधी लांगणू छे, क्योंकि वो तो समझते कि जितने उपवास किए उतना तप हुआ, ये तपस्वी है, उपवास करने वाले को तपस्वी कहने की पद्धति है, और वो उपवास ये तप है और तप से निर्जरा होती है, ऐसे भोले लोगों की मान्यता है। निरंतर परम तपश्चरण मां लीन कौन के परम आवश्यक कर्म छे ते, स्वात्माश्री निश्चय धर्म ध्यान प्रधान ए परम तपस्या छे, एनु नाम परम तपस्या, ए आत्मा ने आश्रय थाय छे, पराश्रय क्रिया प्रपंचती परांगमुख जीव ने स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान प्रधान परम जरूरी कार्य आत्मा मा ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद थवा ए जरूरी कार्य छे, एम
निरंतर परम तपश्चरण मालीन एने तपस्या कीधी छे, जोयू अपवास कर्या फलानू कर्यू एने तपस्या कीधी नथी, अंतर स्वरूप मां लीन ते परम तपश्चरण छे। अंतर स्वरूप मां लीन मुक्षु पूछते है आ बधे ठेकाने परम केम लगाड़े छे, परम एने उत्कृष्ट उत्तर, परम उत्कृष्ट तप छे, पेलो व्यवहार नाम मात्र छे, नाम मात्र छे, यानी उसको भी तप कहने की जो पद्धति है वो तो नाम मात्र, 12 प्रकार के तप जो कहेंगे वो तो नाम मात्र के लिए। यथार्थ मात्र छे आ परम तपश्चरण, अंतर आनंद स्वरूप मां लीन थम एज परम तपस्या छे, बोलू तो नाम मात्र छे, उसको परम शब्द नहीं लगाया, परम विशेषण उसको नहीं लगाते। अपवास करवाने पछी अठम करवो ने अठम ने पारणे पोरसी करे तो 25 अपवास नो लाभ थाय, एवं कहे छे बधा, अठम करे अने एमा जो पोरसी करे तो 25 नो लाभ थाय, संसार नो रखडवानो लाभ थाय एम कहे छे।
दूसरे दिन जब आपको पारणा करते वो थोड़ा टाइम और दो तीन दिन अंतर में फिर जाए, बाद में करे तो उसका और लाभ होता है, जल्दी पारणा नहीं करे और हाँ फिर मध्याह्न पे करे, 12 बजे करे,
यानी जनरली सुबह नाश्ता नहीं करे, डायरेक्ट जब भोजन करे इस तरह। हाँ हाँ अच्छा, 10 के बदले 12 हो, और थोड़ा और 2 घंटे बदल, निरंतर ये क्या लिखा, संसार नो रखड़वानो लाभ थाय, निरंतर परम तपश्चरण मालीन, और ये तो अंतरंग में स्थिरता वही परम तपश्चरण है। परम जिने योगीश्वरो कहे छे ये आ वात, परम जिने योगीश्वरो कहे छे आ कहीं हूँ कहूँ छू एम नहीं, क्यों कह रहे है कुनकुंदाचार्य करे, मैं नहीं कहते, परम योगीश्वरों ने ये कहा है, परम जिने योगीश्वरों ने। छे व्यावहारिक क्रिया प्रपंचती परांगमुख जीव ने स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान प्रधान परम आवश्यक कर्म छे एम निरंतर परम तपश्चरण मां लीन परम जिने योगीश्वरों कहे छे। अज्ञानियों कोई ने आवश्यक क्रियाकांड ने बाहर ने कहे छे, परम जिने योगीश्वरों कहे छे। क्या कहते हैं अज्ञानी, क्या कहते हैं बाहर की क्रियाकांड को कहेंगे और ये परम जिने योगीश्वर तो अंतरंग में जो परम तपस्या रूप स्थिरता है उसको कहते हैं। सकल कर्मना विनाशनो हेतु पूर्ण कर्मना नाशनु कारण एवो जे त्रिगुप्ती गुप्त परम समाधि लक्षण, त्रिगुप्ती गुप्त परम योग नु लक्षण, त्रण गुप्ती वड़े गुप्त नीचे अर्थ छे। परम योग नु लक्षण मन वचन काया त्रण ने गुप्त तेना तरफ नु वळण छोड़ी ने गुप्ती वड़े गुप्त अंतर्मुख एवी परम समाधि छे। क्या कहते हैं मन का वचन का और काया का लक्ष्य छोड़कर अंतरंग में स्वरूप में गुप्त हो जाना, स्थिर हो जाना, उसको गुप्ति कहेंगे, उसी को परम समाधि कहते हैं। और ब्रैकेट में लिखते हैं परम आवश्यक कर्म तेज परम योग छे अने परम योग ते निर्वाण नो मार्ग छे। अब कुछ कहेंगे,
देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप ये जो तीन बातें बताइए ना, मन को वचन को और काया को, त्रण को गुप्त करना, यानी वो उसको जो मन यहाँ वहाँ चंचल होता है उसको इकट्ठा करना, एकत्रित करना, वचन को जो बोलना है वो बंद करना, और काया का जो शरीर का जो हलन चलन है उसको बंद करना। तो मेरा ये प्रश्न है, क्या आप मन को या वचन को या काया को किसको कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ बोलो बेटा। हाँ तो ये तो सब लोग लिखते हैं, नमोहु त्रियोग समहारी के, ऐसे छड़ाला में लिखा है। यहाँ पर भी कह रहे हैं मन को वचन को काया को गुप्त करते, मतलब उससे ये नहीं करते। तो ये तो परद्रव्य है, मन भी है, वो द्रव्य मन भी पुद्गल है, वचन भी पुद्गल है, हाँ, और काया भी पुद्गल है। तो उस पर ये जीव का अधिकार क्या है? तो आपने बताया, लेकिन आपने सुना कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने ये बताया कि अपने स्वरूप में लीन होना, इसी का अर्थ है तीनों पर से अपना लक्ष्य हटे, यानी हमने उससे गुप्ती ली। ये जो इसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये समझना अपना काम है।
नहीं, यहाँ तीसरी लाइन में लिखते, देखो देखो, परम योग नो लक्षण लिखा है ना, मन वचन काया त्रण ने गुप्त, एटले तेना तरफ नु वळण छोड़ी ने, उसका झुकाव भी छोड़ दिया, लक्ष्य तो छोड़ा, उसकी तरफ झुकाव भी नहीं, उसका कुछ आदर है उसके, कुछ नहीं, बिल्कुल स्व सन्मुख हुआ, तो इनके तरफ से बिल्कुल कुछ लक्ष्य ही नहीं रहा, उसको कहेंगे त्रिगुप्ति से गुप्त। अभी स्वरूप में ही गुप्त हुआ तो उसके तीन नाम देना भी क्या, फिर भी वो प्रथा है तो कह देते हैं, क्योंकि स्वरूप में ही जहाँ गुप्त हुआ तो कहाँ से लक्ष्य पहले था अभी नहीं रहा, इसलिए तीन भेद करेंगे। स्वरूप में गुप्त कहने के लिए एक ही है ना, वो किसी से भी हट गया अपन है तो गुप्त है ना, एक ही निश्चय से तो ये परम समाधि जिसको कहेंगे, पर वो ये तीनों का लक्ष्य छूट गया है इसलिए त्रिगुप्ति गुप्त कहते हैं।
देखो ऐसा कहने में आता है कि रीढ़ की हड्डी सीधी करो, सीधा बैठो, मन एकाग्र करो, नासाग्र दृष्टि करो, अरे ये सारा पुद्गल का कार्य तू क्या करेगा, ख्याल में आए? लेकिन कहने वाले कहते हैं और मूर्ख समझने वाले कुछ समझते हैं। वास्तव में ऐसा है कि जब जब यह जीव अपने स्वभाव में स्वरूप में लीनता करता है, तब तो मन का व्यापार रुकता है, शरीर ऐसा ऐसा डांस नहीं करता है, या वचन भी कुछ बोलता भी नहीं है, ना अंतर जल्प होते हैं ना बहिर्जल्प होते हैं, निर्विकल्प अवस्था होती है। ये करने से बाह्य चीज़ें अपने आप होती है। लेकिन लोग क्या मानते हैं, नहीं नहीं ऐसा बराबर बैठो, रीढ़ की हड्डी जीत करो, एकदम ऐसा सीधा देखो, फिर नासाग्र दृष्टि करो, तो फिर ध्यान करो। काय का ध्यान करें, जिसका ध्यान करना है उसका स्वभाव भी मालूम नहीं है। हाँ सब लोग करते हैं, ऐसे लाइन में बैठते हैं, ध्यान के क्लास भी चलते हैं।
हाँ देखो क्या कहते हैं, ये ब्रैकेट हो गया हमारा नीचे अर्थचे, दूसरा पैराग्राफ नीचे से दूसरी लाइन, त्रिगुप्ति गुप्त एटले मन वचन काया त्रण तरफ थी गुप्त है ना, गुप्त में यानी अपने में लीन हो गए, पर किससे हटे है तो तीन नाम दे दिए, त्रणेनी क्रिया ए नहीं, मननी क्रिया नहीं, वाणीनी नहीं, देहनी नहीं, यानी उसको रोकने का वो भी नहीं वो भी क्रिया में ही अटका है ना, अभी मन में कुछ नहीं करने दू, अभी शरीर को कुछ नहीं हलचल होने दू, यानी लक्ष्य शरीर का है उसकी बात नहीं, तीनों का ही लक्ष्य छोड़ दिया है तो उसकी क्रिया कैसी होगी, यानी जो उसमें क्रिया में उसका लक्ष्य जाता था तो अपने स्वरूप में गुप्त हो गया, ख्याल में आई ना बात। ए परम जिन योगीश्वरो तेने कहे छे, वही सकल कर्मना विनाश नो हेतु, यानी सभी संपूर्ण कर्मों का नाश क्षय उसका कारण हेतु ने कारण एवो जे त्रिगुप्ति ग हुआ है, त्रिगुप्ति करो गु लिखना, वो नीचे उकार रह गया, त्रिगुप्ति गुप्त परम समाधि लक्षण परम योग, उसी को परम योग कहा, उसी को परम समाधि कहा है, त्रिगुप्ति गुप्त परम समाधि लक्षण परम योग,
अंतर योग नु लक्षण शू। देखो ये योग से जो कर्म बंध होता है वो योग अलग बात है, वो विभाव भाव है, और ये योग इन्हें स्वरूप के साथ जुड़ान है, उसको योग कहते हैं। आत्मा मा अंतर योग एटले आनंद मा एकाग्र थऊ, योग का अर्थ क्या हुआ, अंतर में एकाग्र हो जाना। एनु लक्षण शू के त्रिगुप्ति गुप्त परम समाधि लक्षण, ए एनु लक्षण छे। अंतर मा योग हुआ, जुड़ान हुई, अंतर मा एकाग्र हुआ आनंद में, वो कैसे, उसका लक्षण क्या है, तो कहते त्रिगुप्ति गुप्त परम समाधि लक्षण। के त्रिगुप्ति गुप्त परम समाधि लक्षण ए एनु लक्षण छे। मन वाणी ने देह त्रण थी छूटी ने, एना वर्ण वाली क्रिया थी पन छूटी ने। देखो मन का वाणी का देह का तो लक्ष्य छूट ही गया, और कहते उसके वलन ने उसका झुकाव वर्ण वाली क्रिया थी पन छूटी ने। आत्माना स्वरूप मां परम समाधि त्रिगुप्ति सहित तेने अहियां परम योग कहेवामां आवे छे। अब मन का भी लक्ष्य छोड़ दिया तो ये विकल्प कहो या वाणी यानी वो जल्प जो कुछ अंतर ही अंतर, मैं शुद्ध हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ये सब छोड़ दिया। परम योग, परम व्यापार, परम योगी, योग मा योग जोड़ा है ते परम योगी। हाँ हाँ, तेज साक्षात मोक्ष नु कारण हुआ ने लीधे। ये जो योग कहा, परम योग कहा, परम योग यानी परम समाधि, परम समाधि ने त्रिगुप्ति गुप्त परम समाधि वो क्या है, तो साक्षात यानी डायरेक्ट मोक्ष का कारण है। साक्षात मोक्ष नु कारण हुआ ने लीधे तेज साक्षात अंतर मा एकाग्रता मन वचन कायानी क्रिया थी छूटी ने अंदर मा गुप्त थई जाऊं, यानी उसी से साक्षात मोक्ष होने वाला है। एज एक मोक्ष नु कारण होवाने लीधे, दूसरा कोई नहीं। साक्षात मोक्ष नु कारण होवाने लीधे निर्वाण नो मार्ग छे। आम निरुक्ति अर्थात व्युत्पत्ति छे। निरुक्ति ने यो शब्द कैसे तैयार हुआ उसका अर्थ करते हैं यहाँ पर। माथे की दो नहीं, माथे ने ऊपर जो बताया था पिज्जुत तो चाहिए डबल, तो दो बार आया इस लाइन, नीचे भी है। हाँ पिज्जुत तो इस लाइन में दो था और नीचे की लाइन में एक बार। हाँ देखो इतना पढ़ लेते, पिज्जुत्तो निवूदी मग्गोत्ति पिज्जुत्तो कहियो तू ने, चौथु पद छे ने, एनो अर्थ करियो। व्युत्पत्ति नो अर्थ आवो छे पिज्जुत्तो, व्युत्पत्ति नो अर्थ आवो छे के स्ववशमा लीन थाऊं, एनु नाम व्युत्पत्ति छे। बीजी व्युत्पत्ति लगावी ने बर ने व्यवहार थी आम थाय तेम थाय ए व्युत्पत्ति नथी। आम निरुक्ति अर्थात व्युत्पत्ति छे। अब कल वो श्लोक कल पढ़ेंगे फिर, और उसका प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अरविंद।